जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय ओम विश्ववाद परमहंस परिव्राज गाजराष्टोत्तर चतहिदिवान के भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तनम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 43। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो भिरभिष्टुतो हरी प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सल अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययौ सधामान अपवर्गवीय। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो भिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सल अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययौ स्वधामानपवर्गवीयः। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो भिरभिष्टुतो हरी प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सल अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययौ सधामानपवर्गवीर्यः। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो भिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यान्मुक्तचक्षुषां ययौ सधामानपवर्गवीर्यः। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतो भिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययौ सधामानपवर्गवीर्यः। शब्दार्थ मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ने कहा इति इस प्रकार प्रचेतो भी प्रचेताओं द्वारा अभिष्टुतः प्रशंसित स्तुति करने पर हरि ही भगवान प्रीतः प्रसन्न होकर तथा उसी तरह इति इस प्रकार आह कहा शरण्य शरणागतों के लिए वत्सलः स्नेह भाजन अनिच्छताम इच्छा न होते हुए यानम विदा अतृप्त तृप्त नहीं हुए चक्षुषाम नेत्र ययौ चला गया स्वधाम अपने धाम को अनपर्ग वर्ग वीर्यः जिनका वीर्य कभी पराजित नहीं होता अप्रतिहत अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो। तत्पश्चात कभी न पराजित होने वाले भगवान ने विदा ली। प्रचेतागण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जी भर कर उन्हें नहीं देखा था। तात्पर्य, इस श्लोक में अनपर्ग वीर्य शब्द महत्वपूर्ण है। अन का अर्थ है बिना, पवर्ग का अर्थ है भौतिक जीवन शैली, तथा वीर्य का अर्थ है शक्ति है। भगवान की शक्ति में छह मूल ऐश्वर्य है, जिनमें एक विरक्ति है। यद्यपि प्रचेता भगवान को जी भर देखना चाहते थे, किंतु भगवान चले गए। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यह अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन है। यद्यपि प्रचेता उनके प्रति आकृष्ट हो रहे थे, किंतु वे चले गए, यह उनकी विरक्ति का सूचक है। ऐसी विरक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखलाई थी, जब वे संन्यास लेकर अद्वैत प्रभु के साथ रह रहे थे। वहां के सभी भक्त चाह रहे थे कि वे कुछ दिन और रुके, लेकिन किंतु महाप्रभु बिना हिचक के वहां से चले गए। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि भगवान अपने भक्तों के प्रति अपार दया भाव रखते हैं, किंतु वे किसी से लिप्त नहीं होते। वे सृष्टि भर के अपने समस्त भक्तों पर समान रूप से दयालु है। ओम अज्ञानम निबिनंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सबका स्वागत है। हालांकि मेरी कोई पात्रता नहीं आप सभी के सामने बोलने की, आप सभी बहुत प्रशिक्षित और विद्वान हैं, लेकिन फिर भी जो भी सेवा मुझे दी गई है वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कुछ भगवान के गुणगान के बारे में कुछ बोल सकूँ और मेरा खुद का शुद्धिकरण कर सकूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रसंग है कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को सब कथा कथन कर रहे हैं, और उसी में वो नारद मुनि प्राचीन वरिषद राजा को मिलते हैं, उसका प्रसंग का वर्णन करते हैं, और उसके ही बाद में जो प्राचीन परिषद के पुत्र है, 10 पुत्र प्रचेताद जिसको कहा जाता है, तो उनके कार्यकलापों के बारे में ये अध्याय है, 30वां अध्याय। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो प्रचेताज है वो बहुत तपस्या करते हैं, करीबन 10,000 साल, और उनके तपस्या, उनका भक्तिमय भक्तिभाव, परस्पर प्रेम की भावना, ये सब देखकर भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते, और प्रसन्न होने के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते और उनको साक्षात दर्शन देते और भगवान उनसे, जैसे भगवान हमेशा करते हैं कि जिसको, जिसके ऊपर वो प्रसन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, कि आप कुछ वरदान मांगिए। लेकिन प्रचेता जो है वो बहुत ही शुद्ध हो चुके होते हैं और केवल सेवा करना चाहते हैं भगवान की, और कुछ उनको अपेक्षा नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और इसलिए वो केवल एक अनंत वरदान मांगते हैं कि हमें सेवा का अवसर दीजिए। तो भगवान फिर उनको आशीर्वाद देके चले जाते हैं कि जैसे आप चाहते हो वैसा हो, और वो वहां से चले गए। तो मैत्रेय मुनि ये सब कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भगवान तुरंत वहां से निकल गए। यहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, एक शब्द पे जोर देते हैं, अनपवर्ग वीर्य। तो अनपवर्ग वीर्य ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद लिखते हैं। अन का अर्थ है बिना, पवर्ग का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली, और वीर्य का अर्थ है शक्ति। तो अनपवर्ग वीर्य का मतलब है ऐसी शक्ति जो भौतिक नहीं है, जो दिव्य है, आध्यात्मिक है, या जिसका कभी घटन नहीं होता है, हमेशा वो बढ़ती रहती है, ऐसी शक्ति। हम भक्ति में देखते हैं कि बहुत परिश्रम हम करते हैं लेकिन कभी हम थकते नहीं, हमारा उत्साह और बढ़ते जाता है। और लेकिन जो पवर्ग शक्ति है उस, वो घटन होते रहता है, भौतिक शक्तियां सभी। और हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में कोई कितना भी शक्तिशाली हो, आदमी थक जाता है समय के अनुसार, या बुढ़ापा आ जाता है, बाद में थक जाए, और उनकी शक्तियां सीमित रहती है, उनकी सीमा रहती है, एक हद तक वो परिश्रम कर सकते हैं, बाद में वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे कृष्ण लीला में हम जांबवान का जो युद्ध होता है कृष्ण के साथ, वो कथा सुनते हैं कि लगातार 28 दिन तक कृष्णा जांबवान के साथ युद्ध करते हैं। अभी जांबवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के अंश माने जाते हैं। तो देखिए, रामलीला के समय त्रेता युग में वो प्रकट हो गए, और कृष्ण आए द्वापर युग के अंत में, यानी हम देख सकते हैं उनकी उम्र क्या होगी वहां पर उस समय, और फिर भी वो शक्तिशाली थे। और ये समंतक मणि की कथा है कि सत्राजित जो राजा था उसके पास समंतक मणि था, और बहुत सारे लोगों ने उनको सलाह दी कि जो भी मौल्यवान वस्तु है वो राजा को देनी चाहिए, तो कृष्ण को अर्पण करने को कहा सबने। लेकिन राजा ने ऐसा, मतलब वो जो है समंतक मणि दिया नहीं। और फिर कथा आती है कि जो उनके भाई थे प्रसेन करके, वो मणि पहन के जंगल में गए शिकार के लिए, एक माला की तरह वो पहन के गए, वो एक मतलब उनका एक प्रेस्टीज जैसा था, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। और आगे कथा आती है कि वो शिकार ने करने गए जंगल में, लेकिन उनका ही शिकार एक सिंह ने कर लिया, और वो उसमें मारे गए। और लेकिन जांबवान ने ये सब जो शिकार हुआ वो देखा, और वहां पर जांबवान आए और उन्होंने शेर को मार दिया और उन्होंने वो समंतक मणि ले ली। और वो यहां पर हम देखने जैसी बात है कि कृष्ण जो है उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि कृष्ण ने ये सब जानबूझ के एक षड्यंत्र रच के जो समंतक मणि है वो चुरा लिया है, ऐसा उनके ऊपर आरोप आ गया। तो ये कलंक धोने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, समंतक मणि की खोज में बाहर निकलते हैं और वो पहुंच जाते हैं जांबवान के गुफा के तरफ। और वहां पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जांबवान ने क्या किया था, वो समंतक मणि अपने बच्चे को एक खिलौना करके खेलने के लिए दिया था। तो कृष्ण वहां जाकर देखते हैं कि एक बच्चा है वो समंतक मणि के साथ खेल रहा है, और समंतक मणि का प्रभाव इतना था कि वो छुप नहीं सकता था, उससे बहुत सारा प्रकाश निकलता था और कितना तो भी सोना उससे रोज निकलता था। और कृष्ण वहां पर पहुंचकर उन्होंने वो समंतक मणि लेने का प्रयास किया, तो वो बच्चे के साथ जो धात्री थी उसने शोर मचा दिया कि अरे कोई ना कोई चोर आया है और उसने अपने बच्चे का खिलौना चुराने का प्रयास किया है। तो तुरंत जांबवान बाहर आ गए और उन्होंने देखा, लेकिन कृष्ण को वो पहचान नहीं पाए क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। भौतिक जगत में ऐसा होता है, भगवान भी कहते हैं ना चौथे अध्याय में कि ऐसा होता है, भूल जाते हैं। फिर 28 दिन तक सुबह से शाम तक दोनों का युद्ध चलता रहा, बराबर मल्ल युद्ध। और जांबवान सोच रहे थे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, पहले तो मैं जवान था, एक छलांग में मैं पृथ्वी को 3 बार प्रदक्षिणा कर सकता था, जांबवान कर मैं जवान होता हूं तब था तभी, लेकिन द्वापर युग में वो बूढ़े हो चुके हैं। 28 दिन तक युद्ध चला, कृष्ण ने तो युद्ध का आनंद लिया क्योंकि कृष्ण वीर रस का अनुभव करना चाहते थे, तो उसका आस्वादन उन्होंने किया। और हम देखते हैं कृष्ण कभी भी ये रस जो आस्वादन करते हैं वो भक्तों के साथ ही करते हैं, जांबवान भी उनके एक भक्त ही थे। और बहुत बड़ा युद्ध हुआ, मुक्का प्रहार हुआ, कुश्ती हुई, मल्ल युद्ध हुआ, लेकिन ये सब होता हो रहा था तब जांबवान समझ नहीं पाए कि ये कृष्ण थक क्यों नहीं रहे, मैं थक जाता हूं हालांकि मैं शक्तिमान हूं, मैंने इतने सारे युद्ध किए हैं लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं जो थकता नहीं है जरा भी, एक कण मात्र भी उसमें थकान नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई मैंने देखा नहीं। तो फिर उन्होंने थोड़ा ध्यान किया तो उन्होंने वो समझ गए कि ये कृष्ण कोई अलग व्यक्ति नहीं है, यही मेरे आराध्य देव प्रभु रामचंद्र जो त्रेता युग में आए थे। तो वो तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लिया उन्होंने, और उन्होंने क्षमा याचना की कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए, और उन्होंने वो समंतक मणि उनको दे दिया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जांबवान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो लेकिन उनकी शक्ति की एक सीमा थी, लेकिन कृष्ण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसे कहते हैं अनपरवर्ग वीर्य, वीर्य मतलब शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। पवर्ग यानी क्या, भौतिक संसार या भौतिक संसार की शक्ति, जैसे संस्कृत है, संस्कृत में अनेक व्यंजन है, च क ख ग घ त थ ज, और उनके ऐसे ग्रुप किए गए हैं, क्या उनके वर्ग किए गए हैं। श्री राधा रामचंद्र की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गोनीताय चंद्र की जय। तो उसमें एक पवर्ग भी आता है, पवर्ग में क्या कौन से व्यंजन आते हैं, प फ ब भ म, और यही भौतिक संसार की परिभाषा है। इसमें ही भौतिक संसार सब सिमट चुका है। प मतलब क्या है? परिश्रम। यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परिश्रम किए बिना कुछ प्राप्त हासिल कर सकता है, कोई नहीं है, सबको परिश्रम करना पड़ता है। और परिश्रम करने के बाद क्या होता है? फेन आता है, वो थक जाता है। प फ ब, ब मतलब बंधन, बंधन में फंस जाता है, क्योंकि जो भी वो परिश्रम करता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो भी फल मिलेगा उसको भोगता है, पर बंधन में फंस जाता है। बंधन में फंसने की वजह से वो भय में, भय से लिप्त हो जाता है, भय रहता है मैं कैसे मुक्त हो जाऊं इसमें से। और अंत में म यानी मृत्यु, मृत्यु सब छीन लेता है, मृत्यु से उसका अंत होता है। तो सारी ये जो भौतिक सृष्टि है इसी परिघ में घूम रही है। प फ ब भ म, जितने भी राजा महाराजा इतिहास में हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, कितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, खिलाड़ी हुए, संगीतकार हुए, गायक हुए, नेता हुए, सबका इतिहास यही है। परिश्रम किया, थक गए, फिर बंधन में फंस गए और भय के वजह से अंत में मर गए। अंत में कुछ नहीं, तो अंतिम मतलब जीवन का एडिशन, मतलब क्या बोलते हैं, बेरीज हम लोग मराठी में बोलते हैं, क्या है? जीरो, कुछ नहीं। लेकिन अपवर्ग ऐसा नहीं है। अपवर्ग मतलब मुक्ति का वर्ग मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो अनपवर्ग और अपवर्ग दोनों एक समान है, एक ही है शब्द, दोनों का अर्थ एक ही है। इसका अर्थ है ऐसी शक्ति जिसका कभी घटन नहीं होता है, बढ़ती जाती है। और ये भी है उसका एक गुण कि ये शक्ति जो है उसको भौतिक गुणों से ये प्रभावित नहीं होती है। हालांकि हम देखते हैं कि भौतिक गुणों से सभी शक्तियां कम होती जाती है, क्षय होता है उसका, लेकिन ये जो आध्यात्मिक जो शक्ति है वो अनपवर्ग या अपवर्ग में आती है, इसलिए वो उनका घटन नहीं होता है, बढ़ती जाती है। तो भगवान कृष्ण जो है उनको अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है, जो उनको उनके अनेक अनेक गुणों को दर्शाता है। तो यहां पर भी इसलिए भगवान को इसी शब्द से संबोधित किया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कृष्ण वहां से तुरंत चले गए। भक्त छोड़ना नहीं चाहते कृष्ण को। हम भी दर्शन करने के आते हैं तो दर्शन करते रहते हैं, लेकिन फिर दर्शन बंद होने का समय होता है, फिर भी मन में इच्छा होती है कि अभी और थोड़ा दर्शन करें। और भी यहां पर ऐश्वर्यों का उल्लेख है, जैसे कहा गया कि भगवान का एक ऐश्वर्य है वैराग्य। वैसे तो भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, पराशर मुनि उनकी व्याख्या करते हैं गुणों की। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णा भग इतिंगणा। तो ये श्लोक क्या समझाता है कि कृष्ण जो है वो सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा वीर है, सबसे ज्यादा उनकी कीर्ति है, यश है, सबसे ज्यादा सौंदर्यवान है, सबसे ज्यादा उनके पास ज्ञान है और सबसे ज्यादा वो वैरागी है। और ये सब गुण जो है वो परिपूर्ण मात्रा में है, और ये गुण सब सदा सदा सर्वदा उनके पास रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं। तो ये विशेषता है भगवान के गुणों में, और इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। और ये अलग अलग लीलाओं के माध्यम से भगवान अपने ये गुण को प्रदर्शित करते हैं ताकि हम सब उनके प्रति आकर्षित हो। यहां पर हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जहां पर हमारी प्रशंसा हो, पूजा हो, गुणगान हो, तो हम वो स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी स्थान पे रहना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि अपना गुणगान हो, है ना। लेकिन जो भगवान जो है वो ऐसा नहीं है, वो वैरागी है। पृथु महाराज का भी हम चरित्र देखते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, आप प्रशंसा मत कीजिए, मैंने तो अभी अभी, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं और बहुत सारी लीलाएं मैंने अभी तक की नहीं है, इसलिए आप मेरी प्रशंसा न कीजिए। लोग क्यों छोड़ जाते हैं ये कोई जगह, क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिलता है। कभी कभी पारिवारिक जीवन से तंग आ जाते हैं, या फिर नौकरी में तंग आ जाते हैं, वरिष्ठ जो है वो हैरेस करते हैं, हैरान हो जाते हैं, प्रेम नहीं मिलता, वो स्थान वो छोड़ जाते हैं। लेकिन जब किसी जगह पे हमें बहुत प्रेम मिलता है, आदर सत्कार होता है, प्रत्येक व्यक्ति हमारी बात सुनना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, कौन छोड़ेगा ऐसे स्थान को। लेकिन भगवान वैरागी है। कृष्णा तुरंत छोड़ गए। यहां पर प्रचेतागण जो है वो भक्ति भाव से उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके शरणागत भक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान तुरंत उनको छोड़ के चले गए। प्रचेतागण तो चाहते थे कि कृष्णा उनके पास रहे, तो यहां पर वो यही कहते हैं कि अनिच्छताम यानम अतृप्त चक्षुषाम, हमारे चक्षु नेत्र अभी तक तृप्ति नहीं पाए हैं, हम अतृप्त है, लेकिन कृष्ण ने निर्णय लिया और तुरंत छोड़कर चले गए। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं कि महाप्रभु ने कटवा शहर में संन्यास दीक्षा ली, तो सभी लोग जो है वो दुखी हो गए, नवद्वीपवासी, कि महाप्रभु से उनका बहुत लगाव था, प्रेम था, और उनका जो रूप था उससे वो आकर्षित थे, उनका जो गुण थे उनके उनसे आकर्षित थे, तो उनके बाल कटना, उनका संन्यास वेश धारण करना, ये सब सहन नहीं कर सकते थे वो। लेकिन हरिनाम संकीर्तन का जो आंदोलन चैतन्य महाप्रभु को बढ़ाना था, प्रचार करना था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, संन्यास दीक्षा ली। सभी लोग दुखी हो गए, नवद्वीपवासी दुखी हो गए, लेकिन वो चले गए। उनकी एक पत्नी थी जो सुंदर थी, नवयुवती थी, आदर्श पत्नी थी, बहुत सेवा करती थी उनकी, उनकी माता एक थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी, प्रेम करती थी, उनके पति नहीं थे, विधवा थी वो, निराधार थी, फिर भी उनको वो छोड़ के चले गए। और उनका उम्र कितना था महाप्रभु का, केवल 24 साल। कितना वैराग्य है। और संन्यास लेने के बाद वो जब पुरी में थे, तभी उन्होंने कहा, अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं, मुझे क्या है, वृंदावन जाना है। तो सब भक्त जो है उनका संग छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उनको बोलने लगे कि आप मत जाइए, ऐसा कीजिए आप नरसिंह चतुर्दशी होने दीजिए, बाद में चले जाइए। नरसिंह चतुर्दशी आया, सब त्योहार हो गया, फिर वो, फिर प्रभु महाप्रभु बोले, अरे मैं अभी निकलता हूं, तो बोले अरे अभी तो रथ यात्रा बहुत समीप है, रथ यात्रा होने के बाद जाइए। फिर रथ यात्रा हो गई, फिर बोले जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी करके जाइए। ये सब चक्कर देखकर महाप्रभु सोच लिए कि ये मुझे जाने नहीं देंगे, कभी परमिशन नहीं देंगे मुझे जाने की, और फिर वो बिना कुछ कहे निकल गए। और जब उन्होंने ये मन की बात सबको बताई, तब सबने कहा कि आप तो स्वराट हैं, आप कभी भी जा सकते हैं, हम तो केवल प्रयास कर रहे हैं आपको रोकने का। और वहां पर देख रहे हैं हम कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो उनकी बहुत आसक्ति हो गई थी महाप्रभु के प्रति, वो सहन नहीं कर पाए ये कल्पना कि भगवान जा रहे छोड़ के, उनका विरह वो सहन नहीं कर पाए और वो मूर्छित हो गए। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने मुड़ के नहीं देखा। तो गोविंद प्रभु एक लेक्चर में कहते हैं कि बहुत बार हम किसी को कल्टीवेट करते हैं, किसी को प्रचार करते हैं और वो भक्ति में आगे बढ़ते रहता है लेकिन बीच में अचानक बह जाता है तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे ये फलाना व्यक्ति उसने भक्ति कम कर दिया, छोड़ दिया। फिर हमारी साधना में बहुत से रुकावट आती है, मतलब डिस्टर्बेंस आता है। तो ये हमें नहीं होना करना चाहिए। गोविंद प्रभु बोलते हैं हमें आसक्त नहीं रहना है, हमें वैराग्य वहां पर लाना है। आपका हमारा काम हमने कर दिया प्रचार करने का, वो आगे उसकी उसका नसीब और वो, इसके लिए छोड़ देना चाहिए। गदाधर प्राण गदाधर पंडित जो है, गदाधर भी उनके साथ पीछे पीछे जाने लगे जब महाप्रभु वृंदावन जाने लगे। और महाप्रभु ने उनको भी कह दिया कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते, वो भी बेहोश हो गए। कृष्णदास कविराज कहते हैं वहां पर कि कौन समझ सकता है भगवान को, भगवान की लीलाओं को। इवन भक्त जो है उनके कार्य जो है वो हम समझ नहीं पाते हैं, वैष्णव की क्रिया हम समझ नहीं सकते हैं, मुश्किल है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझा है। तो वहां पर कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, वज्रादपि कठोराणी मृदुलापि कोमलात्, वज्र के समान वो कभी कभी कठोर बन जाते। तो यहां पर हम देखते हैं कि महाप्रभु वैराग्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्ण भी 5000 साल पहले जब वृंदावन छोड़ के जाते हैं मथुरा, तो यही वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि व्रजवासी जो है उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अतुलनीय है, बहुत प्रेम करते हैं वो। कोई भी ऐसा प्रेम नहीं कर सकता है, ऐसा प्रेम ब्रजवासी उनके साथ करते थे, अपने प्राणों से भी ज्यादा वो प्रेम करते थे। अपने जो अपना जो कुटुंब है, अपने बच्चे हैं, उनसे भी ज्यादा वो कृष्ण के साथ प्रेम करते थे, अपने प्राण से भी ज्यादा वो उनको कृष्ण प्यारे थे। और हर एक ब्रजवासी ऐसे प्रेम करते थे और 2400 घंटे भगवान का वो चिंतन करते थे, स्मरण करते रहते थे। और कृष्ण भी जानते थे कि मेरे बिना ये जी नहीं सकते हैं, तुरंत अपना प्राण का त्याग देंगे। और ऐसे तीव्र प्रेम के वातावरण से भगवान कृष्ण एक क्षण में चले गए और वापस नहीं आए, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये है उनका वैराग्य। कई बार वो रणभूमि को छोड़कर चले गए, कभी उन्होंने परवाह नहीं की कि मेरा मेरे नाम का क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, परवाह नहीं की उन्होंने। लोग निंदा करेंगे मेरी, मुझे रणछोड़ कहेंगे, कायर कहेंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी परवाह नहीं की। ये वैराग्य का लक्षण है। द्वारका में भी तो वो कृष्ण थे, तो 16108 महल में हर एक रानी के साथ अपने विस्तारित रूप में वो रहते थे। तो ये रानियां भी जब रात बीत जाती थी और दिन शुरू हो जाता है तो मुर्गा आवाज देता है, अलार्म बजता है, कृष्ण तुरंत उठ जाते थे और अपने दिन कार्य में लग जाते थे। तो ये जो पटरानियां थी वो कोसती थी ये मुर्गे को, क्यों तुम आवाज कर रहे हैं, सूरज को कोसती थी क्यों तुम जल्दी उग जाते हैं, क्योंकि तुम आ जाते हो कृष्ण उठ के चले जाते हैं, दरबार में जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं और हमें उनका संग नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर भी कृष्ण क्या करते हैं, वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, वो तुरंत चले जाते। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्रचेताओं का को छोड़कर वो तुरंत चले जाते हैं। एक क्षण में वो चले गए, प्रार्थना सुनी, वरदान दे दिया और निकल गए। कितना मतलब शॉर्ट में उनका वर्णन हम कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, उन्होंने गुणगान सुना खुद का, प्रार्थनाएं सुनी, वरदान दिया, चले गए। ऐसे वैरागी है भगवान। तो उसके बाद में भी हम देख सकते हैं कि जब उनका कार्य पूरा हो गया तो उन्होंने देखा मेरा जो भी यहां पर यदा यदा ही धर्मस्य बोलते ना कि मेरा कार्य पूरा हो गया। उन्होंने अपना कुल जो है उसका नाश करवाया आपस में लड़वा कर और वो तुरंत चले गए। बाकी कोई व्यक्ति होता तो यहां पर रह जाता क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा बहुत थी उस समय। तो ये है उनका वैराग्य। इवन पांडवों के बारे में भी उन्होंने कभी सोचा नहीं। उनको पता था कि पांडव मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। अर्जुन तो उनका संग करने के लिए द्वारका में भी आए थे लेकिन अर्जुन का भी उन्होंने कभी विचार नहीं किया, तुरंत छोड़ के चले गए। तो ऐसे भगवान अपने अलग अलग लीलाओं के माध्यम से अपने अलग अलग जो गुण हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ प्रचेता गण जो है वो भी भगवान का संग करने के लिए आतुर थे लेकिन अतृप्त भी थे। यहां पर श्लोक में कहा गया है अनिच्छताम यानम अतृप्त चक्षुषाम। तो अतृप्त थे, भगवान को देखकर वो छोड़ना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं हो रही थी कि उनको छोड़े। अभी तक तृप्त नहीं हुए थे, अतृप्त थे। तो ये एक अच्छे भक्त का लक्षण होता है कि जो भगवान का दर्शन जिसको होता है वो कभी भगवान का दर्शन या भगवान को ओझल नहीं करना चाहते हमारे अपने नजर से। भक्त कभी ऐसा सोचते नहीं कि अरे बहुत हो गया भक्ति, चलो अभी थोड़ा छुट्टी ले लेंगे। अभी थोड़ा सा छुट्टी जैसा लग रहा है लेकिन लेकिन भक्त कभी छुट्टी नहीं लेते हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। और भक्ति का लक्षण भी है यही अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब बिना कोई रुकावट के चलते रहता है, चलते रहते हैं। भक्त कभी थक नहीं जाता है, हमेशा वो लगे रहता है। बाकी जो लोग हैं वो भोग त्याग में भौतिकवादी जो है लगे रहते हैं, भोग करते हैं फिर वो उनको थोड़ा फिर त्याग करने का उनको मन होता है तो भोग को त्याग करते हैं और फिर कुछ समय के बाद त्याग का भी त्याग कर देते हैं, फिर भोग चालू हो जाता है। तो जीवन में कभी स्थिरता नहीं रहती है, हमेशा उद्विग्न उपद्रुता रहते हैं। लेकिन आत्मा का स्वरूप यह नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सेवा करना, प्रेम करना, भक्ति करना, यह आत्मा का स्वरूप है। तो जब जीव भक्ति में स्थित होता है तो वो क्या होता है? अपने जीवन में स्थिर होता है। सिचुएशन सिचुएटेड बोलते हैं ना, वैसा होता है। फिर वो पीछे हटता नहीं है कभी, भोग को वो त्याग देता है और त्याग को भी त्याग देता है और लेकिन भक्ति को कभी त्यागता नहीं है वो। और कृष्णा यहां पर जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव गोस्वामी जो कहते हैं कि अन्य असंख्य भक्तों के प्रति उनकी दया का प्रदर्शन ये वैराग्य है कृष्ण का। तो इसलिए जब कोई भक्त भक्ति से दूर हो जाता है तो कृष्ण उसको क्या करते हैं? खींच के लाते हैं, बाल पकड़ के खींच के लाते हैं। इसलिए हम शिखा रखते हैं ताकि कृष्ण गुरु हमसे हमें खींच के लेके आए। तो कृष्ण ऐसे है, कभी छोड़ते नहीं है किसी को, एक बार पकड़ लिया तो बस उनके ही हो जाओ। और भक्तों का एक लक्षण है कि कितना भी भाव भक्ति करने का मौका मिले उसे वो छोड़ते नहीं है, कितने भी सेवा मिले करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। कभी रुकने का उनको मन नहीं होता है। इवन नैमिषारण्य में जो ऋषिगण है जो इकट्ठा हुए थे वो क्या कहते हैं सूत गोस्वामी को, उसका वर्णन आता है, वयम तु न वितृप्ताम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वता रसज्ञानाम स्वादु साधु पदे पदे। तो वयम न वितृप्ताम, हम कभी तृप्त नहीं होते हैं, वो कहते हैं उत्तम श्लोक विक्रमे, विक्रमे मतलब लीला, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनते हुए हम थकते नहीं है। यह श्रुण्वता रसज्ञानाम, और जो रसिक भक्त है रसज्ञ है वो भक्ति को जानते हैं, वो कभी भगवान की लीला सुनते हुए थकते नहीं है। वो यही कहते हैं अरे रुको मत रुको मत, आप बोलते जाइए, और यही नैमिषारण्य में सूतम गोस्वामी को सभी जो इकट्ठा हुए ऋषिगण है वो बोल रहे थे। तो ऐसा कभी लगता है नहीं कि अरे बहुत हो गया है कृष्ण कथा बहुत हो गई, अभी चलो अभी थोड़ा कुछ अलग कुछ सुनते हैं, कुछ थोड़ा टीवी वगैरह लगाते हैं या किस या कि फिर फेसबुक देखते हैं या व्हाट्सएप देखते हैं, ऐसा भक्त को कभी लगता नहीं है, हमेशा वो सुनते रहना चाहिए। वो हमेशा यही कहते हैं और बोलिए हम सुनते जाएंगे, हम थकेंगे नहीं। परीक्षित महाराज भी यही कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि आप बोलते जाइए, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं थक गया हूं, मुझे प्यास लगी या मुझे भूख लगी मुझे नींद आई, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं राजघराने से हूं तो मुझे राजमहल की में रहने की आदत है, ऐश आराम करने की आदत है, ऐसा मत सोचिए। अभी ये कैसे तपस्या करेगा, थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं बाद में फिर से कथा कंटिन्यू करेंगे, ऐसा आप मत सोचिए। वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को 24 घंटा चालू रखिए कथा, जब तक आपके मुख से हम सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, हमारी भूख प्यास सब नींद मिट जाती है। साधारण प्राणी के लिए यह सहन करना बहुत कठिन है, लेकिन एक भक्त के लिए यह बहुत ही सरल है। उसका कारण भी परीक्षित महाराज कहते हैं, क्योंकि आपके मुख से अमृत की धारा बह रही है, वो कह रहे हैं, और इस अमृत की धारा क्या कर रही है, मेरी थकावट को नष्ट कर रही है, मुझे और उत्साह आ रहा है। आप बोलते जाइए मैं अतृप्त हूं, मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। गोपियां भी भगवान की सेवा करना चाहती थी और हमेशा कथा सुनने चाहती थी भगवान के बारे में। भक्ति के यही लक्षण है, एक थर्मोमीटर है भक्ति का कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं वो इससे हम जान सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बोरिंग लगता है कथा सुनने के लिए तो हम समझ जाना चाहिए कि हमें और तपस्या करनी चाहिए ताकि हम एक शुद्ध भक्त के स्तर पर आ जाए। तो ये जो गोपियां भी है वो ब्रह्मदेव को भी कोसती थी, अरे क्या तुमने ये आंख बनाई है जो हमेशा पलक जो है लपक जाती है, हम देख नहीं पा रहे, हम डिस्टर्बेंस हो जाता है, कृष्ण का स्वरूप जो है वो हम मन में उतार नहीं पा रहे। तो भक्त ऐसे होते हैं, हमेशा सेवा के लिए आतुर रहते हैं, दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, कथा कीर्तन ग्रंथ पढ़ना इसके लिए आतुर रहते हैं। और अतृप्त रहते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि हम क्यों भक्ति में आते हैं, क्योंकि बाहर हमें तृप्ति नहीं मिलती, तो बाहर भी तृप्ति नहीं है यहां पर भी तृप्ति नहीं है, अतृप्त है, ये कैसा है। वैसे तो भक्ति का व्याख्या क्या किया जाती है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आपको सुख मिलेगा तृप्ति मिलेगी, लेकिन संतुष्ट होने के बदले में असंतुष्ट हो जाते हैं, अतृप्त रहते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो दो तृप्ति है यहां पर भी यही है, कहा गया अतृप्तम श्लोक में अनिच्छताम यानम अतृप्तम चक्षुषा। तो प्रचेतागण भी दर्शन करने में अतृप्त रह गए। तो लेकिन ये जो अतृप्ति है, भक्ति की अतृप्ति और इंद्रिय तृप्ति की अतृप्ति, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भौतिक जीवन की अतृप्तता है, उसके अनेक लक्षण है, वो प्रहलाद महाराज एक श्लोक में कहते हैं, सातवें अध्याय से है, सातवें स्कंद से नवे अध्याय 45वां श्लोक है। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हितुच्छम कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजः कंडूतिवत मनसिजम निविषहे तधीर। तो यहां पर जो अतृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति से अतृप्ति निर्माण होती है, उसका वर्णन प्रहलाद महाराज करते हैं कि संसार का जो भी भोग है मैथुन आदि, वो कैसे है, सुखम ही तुच्छम, वो सुख है ऐसा लगता है, ऊपरी ऊपरी से वो लगता है कि है उसमें बहुत सारा सुख है। तो उसका वर्णन कैसे किया जाता है, कंडूयने न करयो रिव, जैसे हाथ में खुजली आता है तो हम हाथ रगड़ते हैं तो हमें क्या लगता है, हा सुख का अनुभव होता है। तो ये भौतिक सुख ऐसा है, लेकिन ये क्या है, कंडूयने न करयो रिव दुख दुखम, ये एक्चुअली दुख है, क्योंकि अलग अलग बंधन में हम फंस जाते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। तो जिसमें तृप्ति होने का कोई संभव ही नहीं है, उस मार्ग पे हम क्यों चले, क्योंकि अंतिम, जैसे इंग्लिश में कहा जाए एंड इज वेल दैट इज वेल, जिसका अंतिम निर्णय हमें पता है कि हम पराजित होने वाले हैं, उस मार्ग के पे क्यों चले। दुख दुखम, और क्या कहा गया, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख बाजह, लेकिन ये कृपण जो व्यक्ति है, कम बुद्धिमान जो व्यक्ति है, वो तृप्त नहीं होते, उल्टा दुखी हो जाते हैं। और कंडूतिवत मनसिजम विषहे तधीर, लेकिन धीर व्यक्ति जो है वो इन सभी खुजली को सहन करता है, वो त्याग कर देता है, उसके पीछे दौड़ता नहीं है। तो ये धीर व्यक्ति का लक्षण है, और जो भक्त होते हैं वो ऐसे धीर व्यक्ति होते हैं। यहां पर मनसिजम ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ज मतलब क्या है, जन्म लिया हुआ, और मनसी मतलब मन में। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति की जो सुख की कल्पना है, ये क्या है, कैसे है, मन में जन्म लेने वाली है, केवल एक कल्पना है, मन से उत्पन्न होने वाला एक स्वप्न है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है। कितने काव्यात्मक शब्द है, देखिए, ये केवल अपना वहम है, स्वप्न है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य केवल भगवान है, इसलिए हम परम सत्य उनको कहते हैं। इसलिए जो एक मन से उत्पन्न वाला है तथाकथित जो सुख है, स्वप्न को, और ऐसे स्वप्न को त्याग सकता है, सहन कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम धीर कहते हैं, सोबर, प्रभुपाद इंग्लिश में उसका वर्णन करते हैं, और यही हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। वेद्यम अत्र वस्तु शिवदम, वास्तवम अत्र वस्तु, वो है भगवान, जिसका अस्तित्व है उसको वस्तु कहा जाता है, और भगवान ही क्या है, जिसका अस्तित्व है ये भगवान है। संसार के सब सुख हमें जो भौतिक सुख है वो सच लगते हैं, लेकिन वो क्या है, एक झूठा सच है, असली वास्तव में सच क्या है, कृष्ण भगवान। इसलिए सच्चा आनंद कभी मिलता है हमें, जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं, और जो भक्त जो होते हैं वो भक्ति करते रहते हैं और अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भगवान अनंत है, तो उनकी सेवा में अनंत सुख है, इसलिए सेवा करते करते आदमी थक नहीं जाता है भगवान की सेवा में, क्योंकि वो जीव भी अनंत है लेकिन वो गलत रास्ते पे चल के थक जाता है, इसलिए वो कभी तृप्त नहीं होता है भक्ति करने में, और भी अतृप्त रहता है। लेकिन ये भक्ति में जो अतृप्तता है वो आनंद की वृद्धि करते रहता है हमेशा हमेशा। लेकिन भौतिक अतृप्ति दुख का कारण है, हमेशा अतृप्त रखती है हमें, एक दुख का अनुभव होता रहता है। यहां पर जो अतृप्तता का अनुभव प्रचेतागण कर रहे हैं वो एक आध्यात्मिक शक्ति का आविष्कार है। अंदर ही अंदर हमारा कि हम देख सकते हैं वो अंदर अंदर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से क्या कह रहे हैं, हमें और सेवा दीजिए, हमें सेवा करने की इच्छा है, हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं खाली सेवा में लगे रहे बस। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा था कि आप हरे कृष्ण क्यों बोलते रहते हैं, क्या मिलता है इससे, क्या लाभ है? तो प्रभुपाद बोले कि हम हरे कृष्ण बोलते क्यों हैं, क्योंकि हमें और अवसर मिले कि हम और हरे कृष्ण बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। तो हमारा हरे कृष्ण बोलने का उद्देश्य यही है, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि हम हरे कृष्ण बोलते हुए कभी तृप्त नहीं होते हैं, हमेशा अतृप्त रहते हैं और हरे कृष्ण बोलना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भौतिक शब्द बोलिए, कोका कोला कोका कोला कोका कोला, बोलने से कभी हम तृप्त नहीं होंगे, या पीने से भी तृप्त नहीं होंगे कोका कोला पीने से, लेकिन कृष्ण कृष्ण हम हजारों साल से बोलो जप रहे हैं, कई साल हो गए लेकिन फिर भी हमें अतृप्ति है, और उसमें एक अलग आनंद का हम आस्वादन कर रहे हैं। और ये आनंद कैसा है, बढ़ते जाता है, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, महाप्रभु उसका वर्णन करते हैं। तो ये हरिनाम का फायदा है, दिव्य आनंद का वृद्धि करने वाला ये हरिनाम है, ये भक्ति का जो मार्ग है। तो प्रचितागण भी ये दिव्य, प्रचेतागण भी दिव्य भक्त है, और वो भी यहां पर एक दिव्य का दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं, एक आनंद का मजा लूट रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम सब भी यही आनंद लूट रहे हैं रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रभु जी बोल रहे बोलते जाइए बोलते जाइए, यानी प्रभु जी शुद्ध भक्त के स्तर पर है, लेकिन मैं बोलने वाला उस स्तर पर नहीं हूं, मैं थक जाता हूं। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण।